नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
जी। प्रिय मित्र, प्रभु के पवित्र और मधुर नाम में आपको नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह उसके वचनों में से सीखने के लिए तैयार हैं। हमने पिछले अध्ययन में उत्पत्ति की पुस्तक के 43 अध्याय को आरंभ किया था, जहां हमने देखा कि याकूब अपने पुत्रों को विन्यामिन के साथ मिस्र देश में भेजने की चर्चा कर रहे हैं। हमने यह भी देखा कि यहूदा अपने पिता से कहता है, यदि आप विन्यामिन को हमारे साथ नहीं भेजेंगे तो हमारा वहां जाना बेकार है। तो आइए हम आज के अध्ययन को उससे आगे बढ़ाते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय के 6 और 7 पद को पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब इसराइल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है मुझसे ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया? परंतु उन्होंने कहा, उस पुरुष ने विशेष रूप से हमारे और हमारे संबंधियों के बारे में यह कहकर पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारा और भी कोई भाई है? तब हमने उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, तब क्या हम जानते थे कि वह क्या कहेगा? अपने भाई को यहाँ ले आ। बेचारा बूढ़ा याकूब पूर्णतः विफल हो गया। वह कहता है कि तुमने उस पुरुष को पहली बार में ही क्यों बता दिया कि तुम्हारा और एक भाई भी है। वह इस बात को नहीं जानता था कि यूसुफ सब बातों को जानता है, लेकिन याकूब चाहता है कि उसके पुत्रों ने अपना मुंह बंद रखा होता। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय के 8 और 9 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर यहूदा ने अपने पिता इसराइल से कहा, उस लड़के को मेरे साथ भेज दे कि हम चले जाएं, जिससे कि हम और तू तथा हमारे बाल बच्चे जीवित रहें और न मरें। मैं स्वयं उसका जामिन होता हूं, उसके लिए तू मुझे ही उत्तरदायी ठहराना। यदि मैं उसे वापस लाकर तेरे पास ना खड़ा करूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। मित्रों, अपने पिता को उत्तर देने के प्रति उसके भाई सचमुच में जिम्मेदार थे। उन्होंने उसे बताया कि उनका उद्देश्य सब कुछ बताने का नहीं था, लेकिन वह पुरुष जांच पड़ताल करता चला गया। हम जानते हैं कि वह अपनी सारी जानकारी प्राप्त करता रहा जब तक कि वह पूरी नहीं हो गई। तब यहूदा सामने आता है और विन्यामिन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करता है और जमानतदार के रूप में खड़ा होता है। मित्रों, मेरे और आपके लिए एक जमानतदार है और वह यहूदा जाति से आया है। प्रभु यीशु मसीह ने वह स्थान ले लिया और मेरा चरवाहा बना। उसने मेरे स्थान को ले लिया और मेरी सजा को भी ले लिया। मैं उसके मांग का पूरा नहीं कर सकता था, मैं उसके समझ या समानांतर में नहीं आ सकता था, परंतु यीशु मसीह बीच में आ गए और वह मेरी जमानतदार बने। उन्होंने मेरे बदले में अपनी जान दे दी। यीशु मसीह की क्या ही अद्भुत तस्वीर यहाँ पर हमारे सामने है। हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। यहूदा कहता है, यदि आपने हमें विन्यामिन के साथ जाने की अनुमति दे दी होती तो इस समय हम लोग मिस्र जाकर वापस आ गए होते। तब हम उत्पत्ति की पुस्तक 43 अध्याय उसके 11 पद में आगे पढ़ते हैं, तब उनके पिता इसराइल ने उनसे कहा, यदि ऐसा ही करना है तो यह करो कि उस पुरुष के लिए अपने अपने बोरों में इस देश की कुछ उत्तम वस्तुओं में से, अर्थात थोड़ा बलसान, थोड़ा मधु, सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम भेंट में ले जाओ। मित्रों, अब यहां पर ध्यान दें कि इनको जिस चीज की कमी थी वह थी अनाज। उन्हें अनाज की कमी थी जो उनके जीवन का सहारा था। स्पष्ट रूप से उनके पास मधु, बादाम और गंधरस थे, इसलिए याकूब उनसे कहता है कि वे उस पुरुष के लिए उपहार ले जाएं। आइए हम उसके अच्छे और मीठे भाग की तरफ चलें। यही उसके कहने का मतलब था कि उपहार से उसे खुश करें। अब हम उत्पत्ति 43 अध्याय उसके 12 से 14 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और अपने साथ दूना रुपया ले जाओ और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित ऐसा भूल से हुआ हो। अपने भाई को भी साथ लो और उठकर उस पुरुष के पास फिर जाओ। काश सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष की दृष्टि में तुम्हारे प्रति दया उत्पन्न करे, जिससे कि वह तुम्हारे भाई को और विन्यामिन को छोड़ दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। मित्रों, तब बूढ़ा याकूब विन्यामिन को त्यागता है और उनके बड़े भाइयों के साथ जाने देता है। अब प्रभावशाली या नाटकीय वातावरण यहाँ पर आता है जब वे दोबारा यूसुफ के सामने खड़े होते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 43 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें। तब उन लोगों ने वह भेंट और दूना रुपया हाथ में लिया और विन्यामिन को साथ लेकर चले और मिस्र देश में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। आगे हम देखते हैं कि यूसुफ के घर में उनका मनोरंजन किया गया, जिसे हम उत्पत्ति उसके 43 अध्याय और उसके 16 और 17 पदों में पढ़ते हैं। लिखा है, जब यूसुफ ने उनके साथ विन्यामिन को देखा तो अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो और एक पशु काट कर भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे साथ भोजन करेंगे। तब उस पुरुष ने यूसुफ के कहने के अनुसार किया और वह उन लोगों को यूसुफ के घर में ले गया। यहाँ पर यूसुफ का उनको अपने घर में निमंत्रण देना या बुलाने का कारण सही था, वह उनके साथ अपने घर में व्यक्तिगत बात करना चाहता था। आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय और उसके 18 पद में पढ़ते हैं। वे लोग तो डर गए क्योंकि उन्हें यूसुफ के घर में पहुंचाया गया था और उन्होंने कहा, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर लाए गए हैं, जिससे कि उसे हमारे विरुद्ध अवसर मिले और वह हम पर टूट पड़े और हमारे गधों समेत हमें दास बना ले। मित्रों, हम देखते हैं कि ये लोग सचमुच में बहुत भयभीत और आतंकित थे। वे यह कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि उन्हें एक अच्छे उद्देश्य के लिए घर में बुलाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले उसने उनके साथ बड़ी कठोरता से व्यवहार किया था और अब वह उन्हें दोपहर के भोजन के लिए बुला रहा है। फिर से यहाँ पर एक ऐसी बात है जिसमें वे डींग मार सकते हैं। क्या आप डींग नहीं मारते यदि आपको देश के राष्ट्रपति अपने घर में रात्रि के भोजन के लिए बुलाते हैं? तो आप सोचते कि यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, परंतु इन लोगों के लिए सुंदर सौभाग्य भी आनंद का विषय नहीं बन पाया। आप देखें कि इनके अंदर में अपराध बोध है। वे अपने को अपराधी समझते हैं क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह उन्होंने अपने भाई के साथ व्यवहार किया उसी के कारण हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को बेच दिया था। मित्रों, हमारे अपराध आनंद को भी विपत्ति में बदल देते हैं। उन्होंने अपने डर में ही अचंभित होकर अंदाज लगाना आरंभ किया, क्या यह मनुष्य उनकी बोरी में रुपया होने के कारण उन्हें बंदी गृह में डालने की योजना बना रहा है? यह ठीक है, लेकिन जब वे यूसुफ को दास होने के लिए इस्माइलियों के हाथ में बेच रहे थे तो उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय और उसके 19 से 22 पदों में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के पास आए और घर के द्वार पर उससे बातें की और कहा, हे हमारे प्रभु, सचमुच जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे तो ऐसा हुआ कि जब हम सराय में पहुंचे और अपने बोरे खोले तो देखा कि प्रत्येक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर ही रखा था, इसलिए हम उसको अपने साथ लेते आए हैं। हम भोजन वस्तु मोल लेने के लिए और भी रुपया लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। मित्रों, हम देखते हैं कि उन्होंने दोष स्वीकार करना और विवरण देना और दया की भीख मांगना आरंभ कर दिया। वे उस व्यक्ति से भी निवेदन कर रहे हैं जो उन्हें यूसुफ के घर लेकर जा रहा था और वह एक उसका कार्यकर्ता मात्र था। हम फिर उत्पत्ति के पुस्तक 43 अध्याय उसके 23 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने कहा, घबराओ मत, डरो नहीं, तुम्हारे परमेश्वर और तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने तुम्हारे बोरों में तुम्हें धन दिया है। मुझे तो तुम्हारा रुपया मिल चुका है। फिर वह शमौन को निकालकर उनके पास ले आया। मित्रों, स्पष्ट रूप से यह व्यक्ति यूसुफ की गवाही के द्वारा जीवित और सच्चे परमेश्वर को जान गया था। मैं सोचता हूं कि इसी कारण से यूसुफ ने उसे जो कुछ होने वाला है उसमें शामिल किया। जब उसने कहा कि तुम्हारे रुपये मुझे मिल गए हैं, तो मैं यह कल्पना करता हूं सभी भाई यह सुनकर और अधिक डर गए होंगे। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय और उसके 24 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, तब उस व्यक्ति ने उन लोगों को यूसुफ के घर में ले जाकर पानी दिया और उन्होंने अपने पैर धोए और उसने उनके गधों को चारा दिया। मित्रों, यहां पर हम पुनः पैर धोने की रीति रिवाज या परंपरा को देखते हैं। हमने इसे इब्राहिम के जीवन में और फिर सदोम नगर में दोबारा देखा था। यह उन दिनों की परंपरा या रीति रिवाज थी। हम फिर उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय और उसके 25 से 26 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने दोपहर तक अर्थात यूसुफ के आने के समय तक उस भेंट को तैयार किया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहीं भोजन करना है। जब यूसुफ घर आया तो वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके पास घर में ले आए और भूमि पर झुककर उसे दंडवत किया। मित्रों, इस बात को याद करें कि बूढ़े याकूब ने अपने पुत्रों को इस पुरुष के लिए भेंट ले जाने को कहा था और यहां पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने भूमि पर गिरकर उसे दंडवत किया। यहां पर यूसुफ के बचपन का स्वप्न दोबारा पूरा हुआ। तब हम उत्पत्ति की पुस्तक 43 अध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं, तब उसने उनका कुशल क्षेम पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वृद्ध पिता जिसकी चर्चा तुमने की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? मित्रों, यह एक अद्भुत समय है। संभवतः यीशु बैठा हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह अपने सिंहासन पर है, लेकिन वह एक ऊंचे स्थान पर था जहां उसके भाइयों ने उसे दंडवत किया। जब वे अपने पैरों पर खड़े हुए तो यूसुफ ने उनकी आंखों में देखा और उन्होंने उसे देखा। यूसुफ ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा पिता जिसके बारे में तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अभी भी जीवित है? आप देखें कि यूसुफ गंभीर रूप से इस विषय पर रुचि ले रहा है, क्योंकि याकूब उसका भी पिता है। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 43 अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ें। लिखा है, और उन्होंने कहा, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है, वह अब तक जीवित है, और उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। यहां पर वे फिर से अपने सिर को झुकाकर उसको दंडवत करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इस दृश्य की एक तस्वीर हो, क्या आप नहीं चाहते हैं? विन्यामिन उनके साथ है, इसलिए वह भी उनके साथ दंडवत करता है। हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक 43 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तब उसने आंखें उठाकर अपने सगे भाई विन्यामिन को देखा और पूछा, क्या यही तुम्हारा वह छोटा भाई है जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। यहां पर यीशु अपने भाई विन्यामिन को देखता है जो उसकी मां का पुत्र है और बाकी लोग उसके सौतेले भाई हैं, परंतु यह उसका अपना सगा भाई है, उसकी माता का पुत्र। वह उनसे पूछता है कि क्या यही तुम्हारा छोटा भाई है जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी? मैं मानता हूं कि सब भाइयों ने हां में सिर हिलाया होगा। यूसुफ ने बिन्यामिन से कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। क्या ही प्रभावशाली क्षण है, और यूसुफ अपने आप को ना रो सका। तब हम उत्पत्ति 43 अध्याय उसके 30 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब अपने भाई को देखकर उसका मन भर आया और यूसुफ रोने के लिए स्थान ढूंढने लगा और शीघ्रता से अपनी कोठरी में जाकर रो पड़ा। मित्रों, भाई को देखकर उसका मन भर आया, अर्थात उसको अंदर तक यह बात छू गई और वह अपने हृदय में आप से बाहर हो गया। मैं ऐसा मानता हूं कि उसने अपने भाइयों से कहा होगा, थोड़ी देर के लिए मुझे क्षमा करें, कोई मनुष्य मुझसे फोन में बात करना चाहता है। और वह उस कमरे से जितना जल्दी जा सकता था चला गया। वह अपने कमरे में गया और वहां जाकर रोया। कई वर्षों के बाद वह अपने भाई विन्यामिन को देख रहा था। यह लगभग 22 वर्षों के बाद है। अब यूसुफ लगभग 40 वर्ष का हो गया है और विन्यामिन एक जवान व्यक्ति है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 43 अध्याय और उसके 31 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, फिर वह अपना मुंह धोकर बाहर निकल आया और अपने आप को संयत करके कहा, भोजन परोसो। मित्रों, यह एक अद्भुत चमत्कारिक तस्वीर है जो अभी पूरी होने वाली है। मुझे आशा है कि आप इसे देखेंगे। जकर्याह भविष्यवक्ता कहते हैं कि यीशु मसीह एक दिन अपने आप को लोगों पर प्रकट करने वाले हैं। वे उससे उसके छाती में भाले से भोंके जाने और हाथों में कीलों के दागों के बारे में पूछने जा रहे हैं। वह उस दिन उनसे कहने जा रहे हैं, ये सब मैंने अपने मित्रों के घर में प्राप्त किया। तब वे उसे पहचान लेंगे और रो पड़ेंगे। यह वही है जिसने उनके लिए उद्धार का प्रबंध किया। यह वही है जिसने उनके छुटकारे के लिए अपनी जान दे दी। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे तो वे ये सब बातें घटित होगी। वह अपने लोगों के बीच प्रकट होंगे जो इसराइली जाति हैं। वहां पर कुछ बचे हुए लोग होंगे जो उसे जान लेंगे, अर्थात पहचान लेंगे। उसके बहुत से भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया जब वह पहली बार इस पृथ्वी पर आया, परंतु उस समय वे सब उसे जानने वाले हैं। उसी प्रकार यूसुफ के भाइयों ने उसे दास होने के लिए बेच दिया था। उन्होंने उसे बेच दिया और उसे छुटकारा पा लिया था, परंतु अब वह अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट करने वाला है। किसी दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। मेरे मसीही मित्रों, अल्प विरोधियों से सावधान रहें। इसराइल देश कितनी अंधी और असावधान है, या वो आज किन बातों पर उलझे हुए हैं, और यदि वे सब लोग प्रेमी या प्यार करने वाले नहीं हैं तो वे लापरवाह हैं। या आज भी सच है कि वे सब हमारे प्रभु यीशु के भाई हैं। एक दिन आने वाला है जहां पर वह अपने आप को उन पर प्रकट करने वाला है। यह एक परिवार की बात है। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसके परिवार को अकेला छोड़ दें। कोई भी सही मसीही अल्प मसीही विरोधी में शामिल नहीं होगा। अपने कमरे में जाकर रोने के बाद यीशु ने पुनः अपने आप को संभाल लिया। उसने अपना मुंह धोया और वापस अपने भाइयों के पास लौट आया और उसने कहा, आओ हम खाएं। उत्पत्ति की पुस्तक 43 अध्याय उसके 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और उन भाइयों के लिए अलग और उन मिस्रियों के लिए अलग भोजन परोसा जो उसके साथ खाते थे, इसलिए कि मिस्री लोग इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे क्योंकि वह मिस्रियों के लिए घृणास्पद था। इस भोजन के बारे में बहुत सी बातें हैं। यदि उनके भाइयों ने ध्यान दिया होता तो वे अधिक डरे हुए नहीं होते। सबसे पहली बात तो यह थी कि यूसुफ ने उन मिस्रियों के साथ नहीं खाया। मिस्री लोगों ने अलग से और अकेले खाना खाया। यूसुफ उनसे अलग था। उसके भाइयों ने सोचा होगा कि यह इसलिए है क्योंकि वह उनका अधिकारी है, अर्थात इस स्थान का मुखिया है। परंतु यहाँ पर अब हम कुछ और पाते हैं। उत्पत्ति 43 अध्याय उसके 33 पद में लिखा है, वे उसके सामने बड़े से लेकर छोटे तक अपनी आयु के अनुसार क्रम में बैठाए गए थे और वे लोग विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। मित्रों, यूसुफ ने उनके बैठने के स्थान को तैयार किया और उसने रूबेन को उसके पहले स्थान पर रखा और बिन्यामिन को भी उसके सही स्थान पर रखा और उसके बाकी भाई भी अपने सही स्थान पर थे अपने उम्र के अनुसार से। वे एक दूसरे को अचंभित होकर देखने लगे और वे आश्चर्यचकित हुए कि उसे यह सब कैसे मालूम है। आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक 43 अध्याय के 34 पद में पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, और उसने अपने सामने की भोजन वस्तुएं उन्हें दी, परंतु विन्यामिन का हिस्सा उसके भाइयों से 5 गुना अधिक मिला। इस प्रकार उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। यहां पर ध्यान दें कि उसने उन्हें परोसा और फिर से वह अपने लगाव को विन्यामिन के प्रति रोक न सका और अपने प्रेम को दिखाने के लिए उसने 5 बार उसे परोसा, जो सबसे अधिक था। वो जवान व्यक्ति अकाल से पीड़ित था और यह भोजन उसके लिए एक लंबे समय के बाद पहली बार मिलने वाला सही भोजन था और उन्होंने उसके साथ मनमाना खाया और पिया। यह एक महिमायुक्त बात थी और वह क्या ही अद्भुत दिन होगा जब यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट करेगा कि वह कौन है। मित्रों, यहां पर अध्याय 43 समाप्त होता है, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ते हुए उत्पत्ति 44 अध्याय से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे। फिर से हमारे सामने एक अद्भुत और प्रभावशाली अध्याय है। यूसुफ के मन में जब उसने अपने भाइयों को अनाज के साथ भेजा तब कुछ और ही बात थी। वह उनके रिश्ते और संबंध की परीक्षा ले रहा था कि वे बिन्यामीन और अपने पिता से कितना लगाव रखते हैं। इस बात को याद रखें कि उन्होंने उसे दास होने के लिए बेच दिया था। क्या वे बदल गए हैं? क्या वे बिन्यामीन को भी दास होने के लिए दे देंगे कि वे अपने आप को बचा सकें? वह अपने मन में इस बात के लिए संतुष्ट होना चाहता था इससे पहले कि वह अपने आप को उन पर प्रकट करें। यहां पर वह जिस परीक्षा का प्रयोग करता है वह इस बात को स्पष्ट कर देगी कि वे फिर से उसी काम को या उसी बात को नहीं दोहराएंगे जो उसने उनके हाथों से अनुभव की थी। मित्रों, यहूदा उस समूह के प्रवक्ता के रूप में सामने आता है और यहां उसे एक अद्भुत दृश्य में यहां पर लाया गया है। वह विन्यामिन के स्थान को लेने के लिए तैयार है और उसका भावपूर्ण बचाव जो विन्यामिन के प्रति है बाइबल में एक बहुत ही दिल को हिलाने वाले हिस्सों में से एक है। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले अध्ययन में अवश्य देखेंगे। इसलिए आप इस अध्ययन में शामिल अवश्य हों और अपने मित्रों को भी सुनने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे भी यीशु के जीवन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सकें। कृपया आप कार्यक्रम सुनकर पत्र अवश्य लिखें कि आपको यह कार्यक्रम कैसे लगा एवं प्रार्थना निवेदन भी भेजें। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।